राधे
जगद्गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस। भगवान नाम महात्म्य के विषय में हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि भगवान और उनका नाम ये दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों बराबर हैं। जो शक्तियां भगवान में हैं वो समस्त शक्तियां भगवान के नाम में भी हैं। भगवान अपनी समस्त शक्तियों सहित अपने नाम में बैठे हैं, इसीलिए वो दोनों एक ही हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमारा काम केवल भगवान नाम से बनेगा, क्योंकि भगवान तो हमको अभी प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे नहीं, लेकिन उनका नाम वो सबके लिए सुलभ है। घोर से घोर पतित जीव भी भगवान नाम का आश्रय लेकर भवसागर पार कर लेते हैं। इसीलिए कलयुग में एकमात्र साधन बताया गया है हमारे कल्याण का, भगवान नाम संकीर्तन। और कोई उपाय नहीं है इस युग में।
कलयुग के वल हरि गुण गा गावत नर पावत भव था।
तो एकमात्र इसी भगवान नाम का अवलंब हमको लेना है, ये हमको दवा बताई गई है। इस दवा का सेवन करना है। क्यों? क्योंकि हम रोगी हैं, अनादिकाल के रोगी। क्या रोग है हमको? भव रोग। अनादिकाल से इस भवाटवी में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो इस भव सागर से पार पाने का एकमात्र उपाय बताया गया है भगवान नाम संकीर्तन। ये हम रोगियों के लिए दवा है जिसका सेवन हमें करना है। लेकिन संसार में भी आप लोग जानते हैं, जब कोई रोग होता है और कोई भी डॉक्टर दवा बताता है तो साथ में कुछ परहेज भी बताता है कि दवा के साथ साथ ये परहेज करना होगा। और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप दवा खाते रहिए, अगर परहेज के विषय में आप सावधान नहीं हैं तो फिर हमारा रोग नहीं जा सकता, लाभ नहीं मिल सकता दवा का। तो ऐसे ही हमें जो साधना बताई गई है, जो दवा बताई गई है भगवान नाम संकीर्तन इत्यादि, इसके साथ हमें परहेज को भी समझना होगा और उससे बचना होगा। वो परहेज क्या है? कुसंग। ये कुसंग इतना भयानक है कि केवल एक क्षण का कुसंग भी हमारी सारी साधना को चौपट कर देता है। केवल एक क्षण का, इतना शक्तिशाली है। इसीलिए इसको हमें गंभीरता से समझना होगा। कुसंग, इसमें दो शब्द हैं, एक कु और एक संग। दो चीजें हैं, कु और संग। कु मतलब निंदनीय, त्याज्य, अग्राह्य, यानी खराब, जो ग्रहण करने योग्य न हो, त्यागने योग्य हो, निंदनीय हो। तो कु का मतलब खराब और संग मतलब लगाव। तो अब इसमें कु को हमें और गहराई से समझना है और लगाव शब्द की गहराई को और समझना है, तो फिर हमको कुसंग आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले लगाव को लीजिए। लगाव मतलब क्या? लगाव यानी मन का लगाव। लगाव मन का ही होता है, शरीर इंद्रिय से लगाव नहीं होता। यद्यपि दिखाई पड़ता है संसार में कि शरीर इंद्रिय से भी लगाव हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में लगाव नहीं है। जैसे देखिए, कोई चीज हमको अच्छी लगती है, हमारी आंखों को अच्छी लगती है, बार बार हम उस विषय को, उस वस्तु को देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे फिर क्या आंख का लगाव कहना गलत है? अरे, जब हमारी आंख उस चीज को बार बार देखना चाहती है, तो हम यही तो कहेंगे कि आंख का लगाव है अमुक वस्तु में या व्यक्ति में। इसी प्रकार हमारे कान, वो किसी विषय को सुनना चाहते हैं बार बार, तो क्या कान का लगाव कहना गलत है? हाँ, क्योंकि आंख या कान इत्यादि का लगाव नहीं होता, ये तो केवल माध्यम है। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक इत्यादि, ये केवल माध्यम है जो विषयों को ग्रहण करती है। आंख और कान इत्यादि का लगाव नहीं होता, लगाव करने वाला है मन। ये जो सुख इत्यादि की अनुभूति होती है, ये आंख, नाक, कान इत्यादि को नहीं होती। बार बार कोई चीज हमको देखने में अच्छी लग रही है, सुख मिल रहा है देखने में, तो ये आंख को सुख नहीं मिल रहा है। आंख के माध्यम से मन सुख का अनुभव करता है, अनुभव करने वाला मन है। तो मेन वर्कर मन है, इसीलिए मन का लगाव ही लगाव कहा जाता है। संसार में जो दिखाई पड़ता है इंद्रियों का लगाव, अगर मन उसमें संयुक्त नहीं है, तो उसको एक्टिंग कहते हैं, अभिनय। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति आया, आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इंद्रियों से आप अपना लगाव शो करते हैं। अरे, आप आ गए, इतने दिन से कहां थे आप? मैं तो आपसे मिलना ही चाहता था। या आपने अपने हाव भाव से, अपनी बातों से उसको ऐसा शो किया जैसे आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, जबकि भीतर से आप उसको नहीं चाहते, लेकिन आपने इंद्रियों से उस लगाव को शो किया, प्रकट किया, तो ये लगाव नहीं है। केवल मन का लगाव ही लगाव माना जाता है। मन किसी विषय का चिंतन करके सुख का अनुभव करता है तो यह मन का लगाव है। यह लगाव दो प्रकार का होता है, एक केवल मन का लगाव, मन का संग, और दूसरा मन प्लस शरीरेंद्रिय का संग। दो प्रकार के संग होते हैं, एक मन प्लस शरीरेंद्रिय का संग। ये क्या है? मन से अटैचमेंट है किसी व्यक्ति में और वो हमारे सामने भी है, हम उसको देख रहे हैं, सुन इत्यादि रहे हैं, अपनी इंद्रियों से उसके विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। एक लगाव तो ऐसा होता है, बेटे से प्रेम है, उसको चिपटाया, वो हमारे सामने है। और एक संग होता है केवल मन का संग, यानी बेटा सामने नहीं है, विलायत में है, लेकिन पहले हमें अपनी इंद्रियों से उसका टच मिल चुका है, उसका विषय मिल चुका है, तो इस समय वो विलायत में है, हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, ये केवल मन का संग है। तो दोनों का फल एक ही होता है, चाहे केवल मन का संग हो या मन प्लस शरीरेंद्रिय का संग हो, दोनों का फल एक सा होता है। तो लगाव का अर्थ आप समझ गए कि लगाव मन का ही हुआ करता है, केवल शरीरेंद्रिय से लगाव नहीं होता। अब कु के विषय में समझिए। कु माने क्या? कु को समझने के लिए पहले अगर हम सु को समझ लें, कु यानी खराब, और इसका उल्टा होता है सु यानी अच्छा। तो अगर हम सु को समझ लें कि अच्छा क्या है, तो फिर जो बचा वो सब कु है। सीधी सी बात है, अगर हमें कु को समझना है तो पहले सु को समझ लें, तो जो बचा वो कु है। इसी प्रकार अगर सु को समझना है तो जो कु न हो वो सु है। यानी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो सु क्या है, अच्छा क्या है? केवल ईश्वरीय जगत। बस संक्षेप में इतनी सी परिभाषा हमको समझनी है, केवल ईश्वरीय जगत ही अच्छा है, उसके अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है वो सब निंदनीय है, कु है, खराब है, त्याज्य है। ईश्वरीय जगत, ईश्वर संबंधित समस्त सामान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत इत्यादि, ये सब ईश्वरीय जगत है। तो इसका मतलब जितनी देर हमारा मन ईश्वरीय जगत में नहीं है, माइक क्षेत्र में है, माइक जगत में है, तो वो कुसंग कर रहा है। तीन चीजें हैं, एक ईश्वर, एक जीव और एक माया। तो मन सहित जीव ये संग करने वाला है, बाकी बचे दो तत्व ईश्वर और माया। तो या तो वो ईश्वर का संग करेगा, ईश्वरीय क्षेत्र का, और या फिर माइक जगत का संग करेगा। दो ही एरिया है, तीसरा तो कोई एरिया है ही नहीं। तो अगर हमारा मन ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं है, इसका मतलब वो माइक जगत में है, यानी कुसंग कर रहा है निरंतर जितनी देर संसार में है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम इत्यादि, इनके विषय में हमको ये समझना है कि ये सब एक हैं आपस में, इनमें कोई भेद नहीं है, सभी में सभी का निवास है, नाम रूप गुण लीला इत्यादि में, सब में सबका निवास है, सब में एक सी शक्तियां हैं। इसीलिए इनमें कोई दुर्भावना करना वो सबसे बड़ा कुसंग है। ईश्वरीय क्षेत्र की ये जितनी भी चीजें हैं इनमें कहीं भी दुर्भावना करना या इनमें से किसी को छोटा बड़ा मानना, भेद मानना, ये सबसे बड़ा कुसंग है जिसको नामापराध कहा गया है, अक्षम्य अपराध। तो ये नामापराध तीन प्रकार का होता है, एक भगवान के प्रति किया गया अपराध, एक उनके नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि के प्रति किया गया अपराध, और तीसरा उनके जन यानी महापुरुष के प्रति किया गया अपराध। तो इन तीनों के प्रति अपराध हो जाता है। भगवान के प्रति आप कहेंगे कि इसमें से दो तो चेतन हैं, भगवान और उनके जन, इनके प्रति तो अपराध समझ में आता है, लेकिन नाम इत्यादि इनके प्रति कोई अपराध कैसे होगा? इनकी कोई शक्ल इत्यादि तो है नहीं, दो तो चेतन है भगवान और महापुरुष, लेकिन भगवान नाम इत्यादि ये है तो चेतन लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। तो नाम की कोई शक्ल इत्यादि हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसके प्रति कैसे अपराध होगा? हाँ, उसके प्रति भी अपराध हो जाता है। जैसे कोई कीर्तन कर रहा है, भगवान नाम ले रहा है, गोपाल गोपाल इत्यादि, तो उसको सुनकर हम कहते हैं अरे क्या इतनी देर से गोपाल गोपाल जप रहा है, ये राम राम क्यों नहीं कहता, श्याम श्याम क्यों नहीं कहता? जो नाम हमको पसंद है वो हम सुनना चाहते हैं। और अगर दूसरे का नाम सुनकर बुराई करते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर कोई कीर्तन शुरू हुआ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, और हम मुंह बनाने लगे कि अरे क्या कीर्तन लेकर के बैठ गए, ये कीर्तन तो हमको पसंद ही नहीं, ये सब नामापराध में आता है। अरे जिस नाम में हमारा अनुराग है हम उस नाम को लें श्रद्धा पूर्वक, लेकिन दूसरे नाम की निंदा कैसे कर सकते हैं? भगवान नाम सब एक ही होते हैं। तो जिस नाम में हमारा अनुराग है हम उसमें अपने प्रेम को और बढ़ाएं, उसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लें, लेकिन दूसरे के नाम की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, क्या पता वो भी वास्तविक महापुरुष हो, तो ये अपराध हो गया। तो जिस नाम में संस्कारवश हमारी रुचि हो, मान लीजिए हम राधे राधे करते हैं, तो ठीक है श्याम नाम भी हम नहीं लेते, राधे नाम में हमारी अधिक रुचि है, तो उसी को हम प्रेम पूर्वक लें, ये सोच करके कि न जाने मेरे क्या संस्कार हैं, यही नाम सबसे अधिक प्रिय लगता है, लेकिन दूसरे नाम की बुराई न करें, उसमें भेद न माने, दूसरे किसी नाम को छोटा न माने। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है जिसको नामापराध कहा गया है। तो इससे हमको सावधान रहना होगा। इस प्रकार नाम के प्रति अपराध हो जाता है, भगवान के प्रति, उनके नाम इत्यादि के प्रति, और तीसरा है उनके जन के प्रति, महापुरुष के प्रति। तो ये जो तीन नामापराध हैं इसमें भी सबसे बड़ा है महापुरुष के प्रति किया गया अपराध, और उससे भी बड़ा है व्यक्तिगत गुरु के प्रति किया गया अपराध। महापुरुष तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को हम गुरु रूप में वर्णन करते हैं, तो तो उसके प्रति किया गया अपराध और अधिक बड़ा है। वो ऐसा अपराध है कि भगवान भी उसको फिर क्षमा नहीं कर सकते। भगवान का ही कानून है, वज्रलेपो भविष्यति, गुरुस्थाने कृतम पापम। अगर किसी ने गुरु के प्रति अपराध किया तो फिर वो अक्षम्य है, उसे मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रति अगर कोई अपराध कर ले तो गुरु के पास ये पावर है कि वो उस अपराध को क्षमा कर सकता है। लेकिन गुरु के प्रति अपराध हो गया तो उसे फिर मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, फिर वो कहीं क्षमा नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे अक्षम्य अपराध से, नामा अपराध से हमें सावधान रहना होगा, बचना होगा। ये बहुत बड़ा कुसंग है जिसके कारण हमारी साधना चौपट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चल पाता कहां कहां हम अपराध कर रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो इसीलिए हम अपनी साधना की गिनती तो कर लेते हैं कि दवा का सेवन तो हम ठीक ठीक कर रहे हैं, नाम तो हम इतना लेते हैं, साधना हम इतनी करते हैं। लेकिन जो कुपथ्य है, जिसका हमें त्याग करना है, जिस परहेज का ध्यान नहीं रखते, उस पर हम विचार नहीं कर पाते कि गड़बड़ कहां हो रही है। इसी प्रकार दूसरा एक बहुत बड़ा कुसंग है परदोष दर्शन। दूसरे में दोष देखना, दूसरे के दोष का चिंतन करना, ये भी बहुत बड़ा कुसंग है। देखिए, दूसरे में दोष हम क्यों देखते हैं? उसका एक कारण है। दोष देखने का मतलब हम स्वयं को दोष रहित मानते हैं। पहले अपने अंदर निर्दोष बुद्धि आती है, दोष राहित्य की बुद्धि आती है कि मैं दोष से रहित हूं, तभी हम सामने वाले व्यक्ति के दोष देखते हैं। अगर हम अपने आप को निर्दोष न माने तो फिर किसी में दोष देखना हो ही नहीं सकता। अरे, हमारी थाली में ही अगर रसगुल्ला पड़ा है तो उसे फिर हम बाजार से लेने क्यों जाएंगे? हमारे सामने जो है उसी को खाएंगे ना। शहद का छत्ता घर में लगा हुआ है तो उसमें से कोई शहद ना निकाल करके जंगल में छत्ता ढूंढने तो नहीं जाएगा। और अगर ऐसा करता है तो उसको कोई सेंसिबल नहीं कहेगा कि तुम्हारे घर में ही तो छत्ता लगा हुआ है, तुम्हारी थाली में ही तो रसगुल्ला पड़ा है। तो ऐसे ही अगर हमारे भीतर ही दोष हम देखें तो फिर दूसरे में दोष देखना हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो हमें दिन रात दूसरे में दोष दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब सबसे पहले हमारे भीतर दोष राहित्य की बुद्धि आती है कि मैं तो दोष से रहित हूं, निर्दोष हूं। इसीलिए स्वयं को निर्दोष मान करके दिन रात संसार में हम यही करते हैं, इतना समय खराब करते हैं दोष चिंतन में। तो संसार में दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक तो निर्दोष में दोष का चिंतन और एक सदोष में दोष का चिंतन। तो जो पहली अवस्था है, निर्दोष में दोष का चिंतन, उसके चांसेस तो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि निर्दोष तो केवल भगवान और महापुरुष ही हैं, वो हमको सदा तो नहीं मिलते, हर समय तो नहीं मिलते। लेकिन दूसरी जो अवस्था है, सदोष में दोष का चिंतन, उसका एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा संसार ही सदोष है। तो अगर हम ये कहें कि अजी सदोष में ही तो हम दोष देख रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं। अरे अगर हम किसी निर्दोष में दोष देखें तब तो आप कह सकते हैं कि हमारा गुनाह है, हम अपराधी हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन सदोष में दोष देखना, इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम, वो तो दोषी है, दिखाई पड़ रहा है। तो फिर अगर उसके दोष का चिंतन हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इसमें हमारा क्या गुनाह है। हाँ देखिए, कुसंग में ये दोनों चीजें आती हैं, ये दोनों ही कुसंग हैं। निर्दोष में सदोष का चिंतन, ये भी कुसंग, और सदोष में दोष चिंतन, ये भी कुसंग है। राधे
थैंक यू फॉर जॉइनिंग जगत गुरु कृपालु परिषद पॉडकास्ट।